وتعالى بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين أبي القاسم محمد. الطاهرين المعصومين الذين اذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما للامام المنتظر والحجه الثانيه شرح الجل اللهم له الفرج، ولعنه الله على اعدائهم اجمعين من الازل الى الابد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وقرآنه المجيد، بسم الله الرحمن الرحيم: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير.
اللهم صل على محمد.
مجلس شروع ہونے میں، میرا بیان شروع ہونے میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور آج بہت ساری اہم اہم باتیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کا ارادہ ہے، تو اس لیے یہ عین ممکن ہے کہ مجلس اتنی طولانی ہو جائے کہ نماز کے وقت کے بہت قریب ختم ہو، اور پھر نوحہ خانی کی وجہ سے ہمارے پاس دعا کا وقت بھی نہ رہے، اور مجلس کیونکہ اس عالی ثواب کی مجلس بھی ہے اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ اس فریضے کو اور اس ثواب کو ہم شروع میں ہی حاصل کر لیں. ایک مرتبہ سورہ فاتحہ مرحومہ انتلیب زہرہ رضوی بنت سید درالحسن رضوی اہلیہ مولانا سید ابو القاسم رضوی، ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد وایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. آج شہزادی کونین سلام اللہ علیہ کی شہادت کی مجالس کا سلسلہ شروع ہو رہا. اب ہر ایک کو معلوم ہے، اور میں نے بھی اپنی جو لاسٹ اسپیچ تھی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کے حوالے سے، اس میں بھی یہ بات دہرائی تھی، جو نئی بات نہیں ہے. ہر ایک جانتا کہ شہزادی کی شہادت کی کئی تاریخ ہیں، اور 40 دن زندہ رہی اپنے بابا کے بعد، وہاں سے لے کے 6 مہینے تک. چنانچہ لاسٹ منتھ ربیع ثانی، آج ربیع ثانی شہزادی کی شہادت کی مجلسیں شروع ہوتی ہیں، اور رمضان تک یہ سلسلہ چلتا ہے جب 6 مہینے پورے ہوتے ہیں. لیکن زیادہ مشہور اب یہ دو ہی روایتیں رہ گئی ہیں، 75 والی جس کی وجہ سے آج کی مجلس ہے، 95 ڈیز والی جس کی وجہ سے تقریباً 20 دن کے بعد ایک سے زیادہ مجالس ہوں گی. اور معلومات کے لیے میں یہ بتا دوں، بلکہ یہ جملہ کیوں نہ کہہ دوں، کہ ذرا سا بعض لوگوں کو اشتعال پیدا ہو، یعنی وہ ذرا ناراض ہو جائے، پھر بھی یہ جملہ بتا دوں کہ ہمارے بعض مراجع جن میں بہت مشہور نام آغائے بروجردی کا ہے، وہ آغائے بروجردی جن کی آئی سائٹ ختم ہو گئی تھی، اور ایک ماتمی کے سر پہ پڑنے والی مٹی نے ان کو 95 ایئرز کی ایج تک چشمہ وغیرہ کی ضرورت نہ پڑی. ان کی ریسرچ کے مطابق وہ جو دوسری تاریخ ہے، 3rd of Jamadus Sani، بہت پہلے کی بات ہے، شاید میں اس وقت 8 سال کا تھا، جب افریقہ میں خوجے حضرات نے اپنی پہلی فیڈریشن بنائی تھی، افریقن فیڈریشن، اور اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے کہ ہر آدمی آ کے ایک الگ تاریخ بتاتا، آغائے بروجردی سے کہا تھا کہ ہمیں کیلنڈر بنا کے دی، اس میں 3rd of Jamadus Sani. لیکن آج آیت اللہ سیستانی کا زیادہ رجحان یہ 75 ڈیز والی ڈیٹ کی طرف ہے، جس پر آج یہ ہم شہادت کی مجلس کر رہے ہیں. تو یہ ہسٹری کے مسائل، یہ مرضی کی فیلڈ نہیں. فیلڈ نہیں کا مطلب یہ کہ اس کا کام نہیں، जिसकी वजह से बहुत सारी गलतफहमियां होती हैं, लेकिन अब मैं ज्यादा इस जुमले को बढ़ाऊंगा तो और मिसअंडरस्टैंडिंग होगी, इसको रोक दीजिए। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट तारीख, जैसा कि मैंने कहा आयतुल्लाह सिस्तानी का ज्यादा इसी जानिब रुझान है कि ये वाली डेट एक्चुअल शहादत की डेट है। अच्छा, ये किसी मर्जी से कैसे कहलवाया जाए कि आपके पास कौन सी तारीख ज्यादा अहम है, जबकि ये उसकी फील्ड नहीं, उसका एक तरीका है जो मैं इंशाल्लाह बाद की मजालिस में बताऊंगा, आज मेरे पास वक्त नहीं। सिर्फ एक छोटी सी बात और तमहीद में बयान करूं और उसके बाद क्योंकि सारे सवाब की मजलिस भी और शहादत की मजलिस में इसाले सवाब को मिलाना इसलिए कोई कबाहत नहीं कि जिसकी शहादत है उसी की बेटी की इसाले सवाब की मजलिस। तो थोड़ा सा तस्किरा इस हवाले से होगा, लेकिन पहले एक जिमनी बात मैं बता दूं कि अल्हम्दुलिल्लाह ये पैनडेमिक एपेडेमिक वबा बीमारी जो लफ्ज कहिए कि काफी हद तक दुनिया में भी कंट्रोल में आ गई है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में तो खासतौर पर विक्टोरिया। तो अब ये जो फेसबुक और यूट्यूब पे मेरी तकारीर जाती है, ये सिलसिला बहुत जल्द बंद होने वाला है, क्योंकि शहादत के हवाले से हमें टॉपिक भी दे चुके थे और ऐलान भी कर चुके थे, वरना आज ही से ये सिलसिला बंद हो जाता, क्योंकि फेसबुक और यूट्यूब का मैं आदमी नहीं और उसके अंदर बजाय मैसेज कन्वे होने के बाद औकात मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती। तो शायद दूसरी डेट में जो मजालिस टॉपिक ना होते ना तो मैं ये जो जुमला अभी मैं कह रहा हूँ इसमें आपके 10 मिनट ले लेता, लेकिन आप गूगल में जाके सर्च कीजिएगा तो बहुत सी चीजें आपको मिल जाएंगी, लेकिन पूरा एक्चुअल वाकया नहीं मिले। मई 1917 सेकेंड वर्ल्ड वॉर थी, बहुत उरूज पर पहुंची थी, नहीं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, और उस वक्त चूंकि ये पहली वर्ल्ड वॉर थी तो किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि ये कब खत्म हो, सारी दुनिया उसके अंदर इफेक्टेड। पुर्तगाल में 3 बच्चे 8 साल का 9 साल का 10 साल का, क्या 2 लड़कियां थी एक लड़का था, ये 3 बच्चों ने एक ऐसी खातून को देखा लेडी कि सूरज से ज्यादा उसका चेहरा चमक रहा था, और उन्होंने उन बच्चों को आके एक मैसेज दिया। जहां यह वाकया पेश आया आज भी उस सिटी का नाम है फातिमा, और कहा कि आई एम फातिमा, मैं फातिमा। और उसके बाद से क्रिश्चियनिटी ने, अब उनकी समझ में तो नहीं आया कि फातिमा किसे कहते हैं, उन्होंने कहा कि ये मैरी द वर्जन का एक नाम फातिमा भी। ईस्ट अफ्रीका के मोमिनीन से पूछिएगा, वहां पे बहुत सारे चर्च वगैरह फातिमा के नाम से हैं, और वो कहते हैं कि ये वन ऑफ द नेम ऑफ मरियम, और ये है इसका बैकग्राउंड 1917 का वाकया। वो 3 बच्चे और उनसे आके शहजादी, उन्होंने कहा कि आई एम फातिमा, मरियम नहीं का, मैरी नहीं का। और फिर उन्हें कुछ दुआएं बताई, कुछ मैसेजेस दिए। बहुत बड़ा ये वाकया है, बड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो हमें तो पता है कि शहजादी फातिमा का वाकया है, तो जैसा कि मैंने कहा कि जनाब मरियम की बर्थ से लेकर उस डेट तक जनाब मरियम का कोई नाम फातिमा क्रिश्चियनिटी की किसी किताब में नहीं था, लेकिन उन्होंने कहा कि वो मरियम ही आई होंगी। तो जब उन्होंने अपने आप को फातिमा कहा, दैट मींस ये भी इनका एक नाम, उस सिटी का नाम भी फातिमा। और अगर आप दुनिया में एयरपोर्ट की फेरिस्त देखेंगे, एक एयरपोर्ट फातिमा नाम का मिलेगा, वो वही उसी सिटी का एयरपोर्ट है, क्योंकि वहां हर साल इतनी बड़ी तादाद में क्रिश्चियन जियारत के लिए जाते हैं। तो अब उन्होंने कुछ दुआएं बताई जो आज तक वहां पढ़ी जाती, और ये भी बता दूं कि शायद 2000 में पोप ने इन 3 बच्चों के इस वाकये को एक मजहबी रुख देके इन बच्चों को सैंड टाइप की कोई चीज तस्लीम की। दूसरा ये बताया कि ये वर्ल्ड वार खत्म होने वाली, और तीसरा एक मैसेज दिया जिसकी वजह से भी आज मैंने शुरू में ये बात शेयर की। मैं वाकया नहीं पढ़ रहा, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास सब्जेक्ट बहुत बड़ा, लेकिन एक तीसरा मैसेज भी दिया, और वो ये दिया अब उसके एक्चुअल वर्डिंग मुझे नहीं पता क्योंकि वो पुर्तगीज जबान है, वहां से इंग्लिश ट्रांसलेशन हुआ, इंग्लिश ट्रांसलेशन से अरबी ट्रांसलेशन हुआ, अरबी जबान से फिर उर्दू में मैंने पढ़ा, मैं पढ़ रहा हूँ। तो ये तीन चार ट्रांसलेशन की वजह से जरा कॉम्प्लिकेटेड हो गया, लेकिन शॉर्ट ये था कि ये तो जंग खत्म हो जाएगी, इसके बाद दुनिया में एक बीमारी फैलेगी। 1919 में स्पेनिश फ्लू के नाम से वो वाली बीमारी फैली या वो पैंडेमिक फैली जो कहा जाता है कि कोविड-19 से पहले की जो लास्ट सबसे बड़ी वबा थी वो 1919 में सेकेंड फर्स्ट वर्ल्ड वार के अगले साल। अब वो पूरा शहजादी का मौजूदा, अलबत्ता वो गूगल में या विकिपीडिया में या इसके अलावा भी, विकिपीडिया के अलावा भी आपको मिलेगा, उसकी इंग्लिश बहुत टफ है। मेरी तो इंग्लिश बिल्कुल बेकार है तो मैं उसमें तो समझ ही नहीं पाया, आप हजरात देख लीजिए। शहजादी फातिमा का आना, और जो कि क्रिश्चियनिटी में फातिमा नाम नहीं है तो उन्होंने उनको मैरी बना दिया, लेकिन उनका ये कहना कि मैं फातिमा हूं, और उसके बाद वो पूरी डिटेल बताना जिसमें खास ये दो बातें कि ये जो वर्ल्ड वॉर चल रही है इसके हवाले से, और उसके बाद एक बीमारी फैलने वाली है उसके हवाले से, और फिर तीन दुआएं देना जो आज तक पुर्तगाल के चर्चिस में मई से अक्टूबर तक पढ़ी जाती है। बहुत लंबी बात हो गई, मेरे पास टाइम नहीं था। अच्छा, इसका खुलासा क्या हुआ? इसका शहजादी का मौजूदा अपनी जगह बहुत अहम मौजूदा, और क्रिश्चियन इस मौजूदे पे, इस मेरिकल पे बहुत ज्यादा बिलीव करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये जो मैंने इतना वाकया पढ़ा इसका ताल्लुक मेरे असल सब्जेक्ट के टॉपिक से। मेरा टॉपिक क्या है? वो इस बात फातिमा कौन, आप क्या जानिए फातिमा क्या है, ये जो कहा जाता है तो खाली गैरों से हम नहीं कहते, अपनों से भी कहते, और आप जान भी नहीं सकते क्योंकि जो हदीस मौला के लिए वही शहजादी के लिए भी है कि या अली तेरी मारिफत किसी ने हासिल नहीं की है सिवाय अल्लाह के और मेरे। फातिमा की मारिफत भी कोई हासिल नहीं कर सकता, बल्कि उनको तो इसीलिए इन्ना अंजलनाहु फी लैलतुल कद्र वमा अदराका मा लैलतुल कद्र कहा गया, तो कोई मारिफत फातिमा हासिल नहीं कर सकता, लेकिन बहुत ही मुख्तसर इस सवाल का अगर मैं जवाब दूं जितनी हमारी कैपेसिटी, बहुत ही मुख्तसर जवाब दूं और फिर उसके लिए दो जुमले और फिर मेरी मजलिस शुरू हो जाएगी। बहुत ही मुख्तसर इसका जवाब हुई इस फातिमा, ये सवाल हमसे पहले जिब्राइल ने किया, तो जवाब मिला हूं फातिमा तो व अबूहा व बालोहा व बनूहा, ये फातिमा का इंट्रोडक्शन है। अब इसमें तीन लफ्ज आए अबूहा बालोहा बनू, ये शहजादी फातिमा की सीरत के अहम तरीन तीन मैसेजेस, और इसको मुख्तसर करूं दो जुमलों में, कायनात का मददगार अली है, फातिमा कौन है? पहला जुमला, जो अली की मददगार भी है और अली की विलायत की सबसे बड़ी डिफेंडर और प्रोटेक्टर भी है, और दूसरा जुमला, और इमाम जमाना की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाली पर्सनैलिटी 13 मासूमी में से फातिमा इज़ाहरा। ये दो जुमले इनकी तशरीह आज की मजलिस में नहीं होगी, आज की मजलिस में खाली तमहीद होगी, ये इंशाल्लाह जो शहादत की जो दूसरी डेट है जो वीकेंड में भी आएगी और एक से ज्यादा मजलिसें होंगी वहां बयान होगा। अली की विलायत की सबसे बड़ी डिफेंडर, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अली की विलायत की पहली शहीद नहीं, दूसरी शहीद, पहली शहीद तो वो शहजादा मोहसिन कि जिसके मसायब अभी आपने सुने, विलायत अली के पहले शहीद का नाम मोहसिन और विलायत अली के दूसरे शहीद का नाम फातिमा है, लेकिन ये तो आप मजालिस में बहुत सुनते रहते, मैं इसके बाद वाली मंजिल पे आपको ले जाऊंगा। और दूसरा जुमला जो असल मौजूद, इमाम जमाना की तैयारी हर मासूम ने कराई है फातिमा के अलावा 13 मासूम जिसमें खुद इमाम जमाना भी शामिल, 13 मासूमीन में सबसे ज्यादा इमाम जमाने की प्रिपरेशन फातिमा ने कराई। और ये जो अभी मैं मेडिकल पढ़ रहा था ना, बस इससे रिलेट एक बात कह के अपने मौजूद पे आता हूँ, और इमाम जमाना के जहूर से पहले की दो साइन आज हर मोमिन को मालूम, हर मोमिन को मालूम कि इमाम जमाना के जहूर से पहले अल मौतुल अहमर व अल मौतुल अबयस, एक रेड डेथ आएगी दुनिया में, एक व्हाइट डेथ आएगी, और पहली सुर्ख मौत की इमाम ने वजाहत की, एक्सप्लेन किया, रावी ने कहा मौला मौत तो एक होती है और टेक्निकल अर्थ तो नहीं होती, कहा कि सिर्फ मौत का मतलब एक जंग हो, बहुत बड़ी जंग, पूरी दुनिया उसकी लपेट में आ जाएगी, वर्ल्ड वॉर, और दूसरी वाइट मौत का मतलब है कफन 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 कफन, ये बीमारियां फैलेंगी। 1917 का मौजूदा जिसमें शहजादी पुर्तगाल के उन तीन बच्चों के पास आती है, वही दो बातों के हवाले से कि ये वर्ल्ड वार ये खत्म होगी, इसके बाद एक बीमारी फैलेगी। वो जो मैसेज थी जो बच्चे पूरा समझ भी नहीं पाएंगे, बड़ों की हालत है कि समझ नहीं पा रहे हैं और वो अपने मोमिन बड़े तो वो तो नॉन मुस्लिम, छोटे छोटे बच्चे जितना मैसेज दिया उसमें से जितना वो कन्वे कर सके अपने बड़ों, उसकी तफसील आप देख लीजिएगा गूगल में या विकिपीडिया। लेकिन खुलासा ये जो इमाम जमाना के जहूर से पहले की दो बिल्कुल 100% कन्फर्म साइन, ये शहजादी 100 साल पहले बता के जा चुकी है एक और कॉन्टेक्स्ट में, एक और हवाले से। अब ये था बहुत ही मुख्तसर जवाब जो अभी मैंने कहा कि हद निगाह तक मोमिन नहीं, यानी 5 मीटर तक तो मुझे मोमिन नजर आ रही। तो अब ये उस बड़ी दूसरी मजलिसों में तो नहीं होंगे, मेलबर्न में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी मजलिसें होती हैं, मोमिन हर जगह पहुंचता है, एक मजलिस ये सुनी दूसरी मजलिस को सुनी। तो इसलिए मैंने कहा कि पूरा अपना सब्जेक्ट और टॉपिक पहले ही दिन मुकम्मल कर दूं, हुई फातिमा इमाम अली की सबसे बड़ी मददगार और डिफेंडर ऑफ विलाया, प्रोटेक्टर ऑफ विलाया, और दूसरा इमाम जमाना की सबसे ज्यादा तैयारी करने वाली। अब आइए जरा सा इस मौजू को हम लेके आगे चले, मगर उससे पहले एक चीज का तस्करा कर दिया जाए, क्योंकि इसका जहूर ईमान से बहुत गहरा ताल्लुक है। अब जो बात मैं कह रहा हूं वो आज नहीं आएगी, ये यानी ये रिलेशन ये कनेक्शन आज नहीं आएगा। हुज्जतुल इस्लाम मौलाना अबुल कासिम रिज़वी साहब एक बार नहीं बार बार मुझसे ये कह चुके कि आप मेरे बाप की तरह हैं, वो इतनी ही इज्जत और इतना ही एहतराम मुझे देते हैं जितना वाकान एक बेटा अपने बाप को देता। और कई बार वो ये फरमा चुके। तो इसी एतबार से अब ये मरहुमा मेरी बेटी ही के मानिंद हुई, तो मैं एक मरतबा इस हवाले से इसे अपनी फैमिली का, अगर कि हर मोमिन एक फैमिली एक ही फैमिली लेकिन इमीडिएट फैमिली का हम समझते, पहले तो आपको एक चीज ये याद दिला दूं कि जब मैं मेलबर्न में आया था सिर्फ एक इमाम पढ़ा था पंजतन सेंटर, मैंने अलकायम फाउंडेशन की तकरीर में तस्किरा किया और किसी किस्म का मैयत के हवाले से यहाँ कोई इंतजाम नहीं, ज्यादा लोग तैयार भी नहीं थे, इसलिए कि उस वक्त नया नया इमिग्रेशन हो रहा था, इमिग्रेशन नौजवानों का होता है, एज लिमिट भी होती है दुनिया के मुल्क, अब जवान आदमी को कहाँ मौत याद आती, और अगर याद आती भी है तो मौत की प्रिपरेशन का कहाँ ख्याल होता। मरहूम गुलाम अब्बास पंजू खुदा उनके दर्जात बुलंद करे, और अल्लाह ने फिर उनको ऐसा नेक और सआदतमंद बेटा दिया जिसने अपने बाप की ख्वाहिश पूरी की। मेरी पहली मुलाकात उनसे हुई, उन्होंने कहा कि अभी लोगों की तवज्जो नहीं है लेकिन कब्रिस्तान यहाँ लाजिम है और गुस्ल मैयत का इंतजाम। और कुछ ही अरसे के बाद रईस फातिमा मरहुमा अल्लाह उनको आले इलीन में शहजादी फातिमा से मुलाक कर चुका होगा मुझे यकीन है, उनकी मौत हुई। कोई गुस्ल खाना नहीं था, काम से गुस्ल खाने में ले जाया गया जो कि विंटर था, बहुत जल्दी मैं इस मरहले से आगे बढ़ रहा हूँ, विंटर था और फौरी तौर पे सारे इतनी जल्दी सारे मरहले तय हो गए कि शायद सुबह 10 बजे खबर आई और 4 बजे तक हम लोग नमाज वैशत की तैयारी कर रहे थे क्योंकि विंटर में मरहले जल्दी होती। और क्या नमाज वैशत हुई, वो भी मेलबर्न में इस अंदाज से पहली बार नमाज वैशत हुई थी कि पूरा सेंटर भरा हुआ था और लोगों ने जमात की शक्ल में नमाज पढ़ी थी, यानी मैंने पढ़वाई थी, जमात हुई नहीं थी, सुन्नत नमाज है। खुलासा ये क्या इसके बाद ये मसले पेश आते रहे, और फिर ये कि अगर बाज़ औक़ात मैयत रिलीज होने में या कब्रिस्तान की दफन होने में टाइम लगे तो कोल्ड स्टोरेज की जरूरत पड़ती, अब मजबूरी में तो यहाँ शुरू में, यानी मैं बात कर रहा हूं अपने से भी 20 साल पहले की, काफिरों के कब्रिस्तान में भी मैयत दफन हुई, मजबूरी है, किसी को कंडेम नहीं कर रहा, किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा, किसी की जानिब इशारा नहीं कर रहा, लेकिन फिर अल्हम्दुलिल्लाह कब्रिस्तान का प्रोजेक्ट हुआ, कब्रें खरीदी गई और अब तो माशाल्लाह प्रोजेक्ट बहुत आगे निकल गया। लेकिन गुस्ल खाना ठीक है, वो काम तो चल जाता है, पानी वानी डाल के आपने पाक कर लिया, लेकिन एक ऐसा गुस्ल खाना पूरी मैयत आपने कोल्ड स्टोरेज में 2 दिन के लिए डाल दी, शराबी भी है, कबाबी भी है, जुआरी भी है, जानी भी है, हर किस्म के गुनाहगार है, नजासतें भी है, शरण चल जाएगा काम। लेकिन फिर यह सोचा गया कि गुस्ल खाना होना चाहिए, गुस्ल खाना बना, कोल्ड स्टोरेज बना, इससे पहले भी मैयतें आई, बरादर मोहतरम फहीम साहब की वाइफ की मैयत, ये मैयत देखिए कैसा माहौल बना, मैयत रखी है पूरी रात, लेकिन इमाम बाड़ा है, ये सारी शबी है वो सिजदेगाह है वहां तो मैं गया था ना फेडरल होम, क्या नजर आया मुझे औरतों के लिए लिपस्टिक रखी हुई है, नेल पॉलिश रखी हुई है, पाउडर रखा हुआ है, ये है मैयत की तैयारी का सामान। यहाँ पे ये शबी है, यहाँ पे ये अलम है, यहाँ पे दुआ की किताब है, यहाँ कुरान है, यहाँ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ कि खास अलस, अभी मैं अगला जुमला कहने वाला। और पूरी रात नमाजें भी हो रही है, जमात का वक्त आया तो जमात, और उसके दरमियान मैयत, भाई माहौल का एक असर तो होता है ना, ये रूहानियत का माहौल, ये क्यों? इसलिए कि बना। और जैसा कि मैंने कहा कि पीएसबी पहला सेंटर था, अब उसके बाद सेंटर बनते चलेंगे, ये पहला कोल्ड स्टोरेज जो खुसरोखाना था बनेंगे, अब कई बनेंगे, नेकी का काम है जितने ज्यादा हो, हम लोगों का ताबुन भी होगा इसके अंदर, लेकिन एक माहौल बनाइए। ये इसमें नहीं जाइए कि भाई हम तो अपने यहाँ से नियरेस्ट और इजीएस्ट को लेंगे, ठीक है वो शायद तो जाए है ना के कन्वर्ट पार्लर के अंदर मैयत को ले जाना, ठीक है वहां से पहले उस कोल्ड स्टोरेज के अंदर वो शराबी की मैयत रखी हो कि जानी की रखी हो कि जुआरी की रखी हो, शरीयत तो इजाजत देती, ऐसे मौकों में शरीयत बहुत याद आ जाती, मगर शरीयत ये भी कहती क्यों मैयतों को वादी सलाम नजफ अशरफ मुंतकिल करने का हुक्म अगर पॉसिबल, ये चीजों के असरात हैं के फायदे वो अल्हम्दुलिल्लाह हुआ, वरुण गुलाम अब्बास पंजू का ख्वाब और हमने अपनी आंखों से देखा। अब यहाँ पर अगला मरहला और वो ये है कि बहुत से लोगों का शुक्रिया अदा किया गया, लेकिन मैं इसको अपनी फैमिली को लॉस समझकर, मरहूमा को अपनी बेटी समझकर शुक्रिया जो और लोगों का अदा करता हूँ। नंबर एक, जिन्होंने गुस्ले मैयत में हिस्सा लिया, गुस्ले मैयत इतना आसान काम नहीं, और इसका सवाब मालूम है आपको क्या, उसने मैयत का सवाब यह है कि तुम मैयत पे पानी डाल के उसको गुस्ल दे रहे और फरिश्ते तुम्हारे जिस्म को गुस्ल दे के तमाम गुनाहों को इस तरह से दूर कर रहे कि जब तुम मैयत के तीन गुस्ल मुकम्मल करोगे मैयत पाक हो जाएगी और तुम इतने गुनाहों से पाक हो जाओगे जैसे वो बच्चा जो आज पैदा हुआ। यह उसने मैयत का सवाब बताया गया दो शर्तों के साथ। पहली शर्त यह है कि नियत अल्लाह की खुशनुदी, वो कंपटीशन मुकाबला ना हो, और दूसरा यह है कि मैयत के किसी ऐब को किसी को ना बताओ। ये बहुत अहम शर्त है, वक्त नहीं है, इसकी तफसील में नहीं जा रहा। तो रिवायत यह है, जो हज के लिए रिवायत है, जो हज की इतनी जहमतें उठाकर अरफात, मिना, भूख प्यास परेशानी सवाब मिलता था, उसने मैयत देने वाले को इस खाने से जब निकल रहा है वो सवाब दे चुका है, तमाम गुनाहों से पाक हो चुका। और नंबर दो, यह रिवायत है कि कफन पहनाने का सवाब, कहा कि जिसने किसी मैयत को कफन पहनाया अल्लाह दुनिया में उसके सारे ऐब ढापेगा और कयामत के दिन उसे जन्नत का लिबास बनाकर कब्र से सीधा जन्नत में पहुंचाएगा। ये बड़ी इबादत है। मुझे याद है कि मैंने 20 साल पहले जुमले कहे थे, लोग नाराज हो गए थे, हद से नाराज हो गए। मैं मेलबर्न में दुनिया में सबसे आखिर में आया हूँ, मेलबर्न में अगर मैंने रहने का फैसला किया है तो ये मेरा पर्सनल च्वाइस है, आप में से अक्सर लोग अब नाराज हो रहे हैं, हो जाए अक्सर लोग अपने मुल्क से निकले तो सीधे यहीं पे आए। मैंने तो अमेरिका देखा, मैंने कनाडा देखा, मैंने इंग्लैंड देखा, मैंने यूरोप देखा, मैंने न्यूजीलैंड देखा, मैंने ऑस्ट्रेलिया देखा, तब सोचा कि यही जगह रहेगी, ये मेरा पर्सनल चॉइस। आपको बताएं मोमिनीन की आदत, दुनिया के किसी भी मुल्क में जाएंगे हम जैसे लोग मजलिस पढ़ने वाले, मौलाना आप यहाँ क्यों नहीं ठहर जाते, हम कर देंगे सारे इंतजाम। और उस वक्त इतना आसान था दुनिया के उन मुल्कों में भी नेशनलिटी मिलना, नहीं मुझे नहीं, ये अमेरिका मेरे रहने के लिए नहीं, खाली मजलिस पढ़ के आ सकता हूँ, ये कनाडा मेरे, मैं कनाडा के लिए, मैंने कहा रहने के लिए नहीं, मैं बच्चों को यहाँ नहीं पाल सकता। ऑस्ट्रेलिया का फैसला मैंने क्या देख के किया, लेकिन जब मैंने आके लोगों को बताया कि मेरा तजुर्बा कनाडा में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, एक मैयत आती है, मोमिनीन में झगड़ा होता, हम गुस्ल देंगे, हम गुस्ल देंगे, यहाँ तो तैयार ही नहीं होता, चंद मुख्तसर से लोग होते और उनमें भी बाज़ औक़ात शैतान फूट डाल देता कि जी हम नहीं देंगे गुस्ल, तो ये अपना नुकसान है, मरने वाले का तो नहीं, वे वैसे ही वाजिब किफाई। अरे क्यों, आइए अब सुनो, शमऊन यहूदी शहजादी फातिमा की चादर को देखकर मुसलमान हुआ कि नहीं हुआ? रिवायत हर एक को पता है कि मैं इससे रक्त मिला रहा हूं, हर एक को मालूम है कि नहीं, शमऊन यहूदी इस्लाम का सबसे बड़ा दुश्मन, डेडली एनिमी, और उसके दिल में एक ही ख्याल था जो यजीद के जहन में भी था, जिसने यजीद ने दरबार में कहा, उसके ध्यान में ख्याल था कि मोहम्मद ने हुकूमत हासिल करने के लिए नबूवत का ढोंग रचाया, इनको इख्तदार चाहिए, इनको हुकूमत चाहिए। शहजादी के घर एक फकीर भिजवाया गया, आया रसूल के पास, का रसूल ने कहा मेरे पास वो खुद भी खाने को नहीं है, इसको ले जाओ मेरी बेटी के घर। वहां शहजादी के घर में बाबा के घर से ज्यादा फाके थे, मगर शहजादी ने उसको वापस नहीं किया। चादर को भिजवाया, शम्पून की दुकान पे कैसे गिरवी रखो और इसके बदले में इतना दे दो कि एक वक्त का खाना बन जाए। अब वो शम्पून का दुकान ही है, ये उसका बिजनेस है। चुनाचे वो चादर लेके उसके अपने गुलाम कहा इसको मेरे में रख कर आ जाओ और भिजवा दिया। रात को घर आया, चादर पे निगाह पड़ी, चकरा के कही चादर कौन सी? कहा ये तो वो है जो आज आपने भिजवाई, उसकी बीवी बता रही। कहा ये वो चादर है मोहम्मद की बेटी की चादर है जिसमें जगह जगह खजूर के पत्तों के पेबंद लगे हैं, इतनी पुरानी वो चादर है। कहा ये जिसकी जो अपनी बेटी के लिए सही चादर, नहीं नहीं कम से कम सही तो इसमें पेबंद तो ना लगे हो, जो अपने बेटी के लिए चादर का इंतजाम ना कर सके। मैं उसके बारे में ये सोच रहा था कि उसने इख्तदार के लिए ये नबूवत का ढोंग रचाया। मैं गवाही देता हूँ अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मद रसूलुल्लाह, वो सच्चा रसूल है। बहुत मशहूर है, लेकिन अब मैं इस वक्त जहां तक ले जाना चाह रहा हूँ रिपीट करना पड़ा। खुद खाली इस्लाम नहीं लाया, पूरी फैमिली को मुसलमान किया, बड़ा आदमी पैसे वाला। चुनाचे यहूदियों की नाक कट गई, हमारा इतना बड़ा आदमी मुसलमान हो गया, सबने बायकॉट कर दिया। जैसे मक्के में खदीजा ताहिरा का बायकॉट किया गया था, मदीने में इसका चंद दिनों बाद बीवी का इंतकाल हो गया। रात का वक्त है, विंटर है, मदीने की सर्दी कभी आप देखिएगा आपको यकीन नहीं आए इतनी सर्दी होती। अरब तो डेजर्ट तस्वुर गर्मी का, लेकिन डेजर्ट में सर्दियों में सर्दी भी बहुत होती, मक्के में नहीं मदीने में। रात का वक्त बीवी के मैयत घर में पड़ी, वो अपने घर से निकला, यहूदी तो बायकॉट कर चुके, मुसलमानों के घर जा रहा कि मेरी बीवी को आके मुस्लिम मैयत दे, कोई तैयार नहीं हो रहा। भाई हमारी बीवी जो है वो यहूदियों के महल में अकेले नहीं जा सकती रात के वक्त, और हम दिन के वक्त आना बात करेंगे, सर्दी बहुत। वो एक एक घर में जा रहा है, शहजादी को खबर मिली, चादर ओढ़ के आई और कहा चल मैं तेरी बीवी की मैयत को गुस्ल देती हूँ। फातिमा ने अपने हाथ से आके शमू ने यहूदी की बीवी को तीनों गुस्ल मैयत दिए, ये सीरत फातिमा है। फातिमा की कनीजों ने दो दिन पहले इस्तेमाल किया, और हमारी कम्युनिटी की बहुत सी खवातीन के दिल में जज्बा होगा, लेकिन इस जज्बे को प्रैक्टिकल में ढालिए। यह है सीरत फातिमा, दो दिन पहले की यहूदन। आज कल मैं इस्लाम पढ़ लिया तो फातिमा ने उसे वो इज्जत और एहतराम दिया और ये बताया कि यह कितनी बड़ी खिदमत है जो मरने वाले की तुम कर सकते। अब यहाँ पे आज बहुत इस वक्त बहुत सेंसिटिव बात को मैं शुरू कर रहा हूँ, लेकिन ये शरण मुझ पर वाजिब हो गई, वरना मैं ये बात नहीं कह सकता कि शरण मुझ पर यह वाजिब हो गया है बयान कर, इसलिए बयान करता हूं और फिर अपने मौजू के अहम हिस्से पे आता हूं। और वो ये कि शायद आपके इल्म में ना हो कि मेलबर्न में एक बार फिर अखबारियत दाखिल की जा रही। जब मैं आया था शुरू में उस वक्त बहुत एग्रेसिव तरीके से अखबारियत ने मेलबर्न पे अटैक किया। मुझे याद है आप ऐसे बाद लोगों के घर में मैं मजलिस पढ़ता था, मजलिस के बाद बहस करना होती, यहाँ पे जो इस टाइप के लोग थे वो जब जवाब उनका इल्म जवाब दे जाता था तो सिडनी से बुलाए जाते थे वो लोग जो बहस करे मजलिस के बाद, वो अल्हम्दुलिल्लाह वो तो नाकाम हो, वो एग्रेसिव अंदाज था इसलिए नाकाम हो। बहुत आहिस्ता आहिस्ता अखबारियत की तीन बहुत अहम पहचान है हमारे यहाँ इंडिया और पाकिस्तान। अब देखिएगा कि ये तीन बातें हो रही है कि नहीं। नंबर एक, अखबारियत का पहला हमला, अखबारियत का मतलब है मुश्तहदीन के खिलाफ, तो डायरेक्ट पहला हमला नहीं होता। होता यह है कि ये अपने आप को आयतुल्लाह अल-उज़्मा क्यों कहते हैं, तो मौला का लक़ब। आप ऐसे जिनको मालूम है अखबारियत का पहला एतराज ये होता कि मौला के लक़ब कोई मुज्तहिदीन ने ग़ासिबाना कब्जा करके अपने इख्तियार में ले लिया। हाल ही बाकायदा मेंबर तक से कहा गया कि तो लक़ब तो मौला का है, तो महाराजिए तो इसलिए बास महाराजिए इसको मना कर रहे, टॉप के जितने मर्जे कोई मना नहीं कर रहा। लेकिन मैं तफसील में नहीं जा रहा, मैं तो कह रहा हूँ ये हमला कैसे होता। नंबर कोई बात कही जाएगी फौरन एक हदीस और कहा जाएगा मैं तो हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ। ये अखबारियत, अखबारियत कहती है हम फतवे वगैरह को नहीं मानते, हमको तो हदीस सुनाओ, हम हर चीज हदीस से लेंगे, क्योंकि उनके यहाँ उसूल काफी और फुरू काफी की हर हदीस सही। बिहार के हदीसों को तो वो भी सही नहीं कहते, लेकिन हदीस यहाँ बिहार के भी नकल की जा रही। बस ये बस हदीस का लफ्ज आया तब देखिए आम आदमी मुतासिर होगा कि नहीं। कहा जाए कि ये छठे इमाम की हदीस है या कैसे सिस्तानी का फतवा, आम आदमी क्या कहे? हम फतवे को माने कि हदीस को माने? फतवे की तारीफ क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फतवा? जैसे अगर बरादरान अहले सुन्नत नहीं दुश्मनान अहले बैत हम क्या कह करते तुम झूठ को मानते हो, हम कहते हम तकिया कायल है, झूठ नहीं, कहा नहीं तकिया झूठ, तुम जिना के कायल हो, हम कहते हैं मुता के कायल, कहा नहीं हम कह रहे हैं कि मुता जो है वो जिना, तुम बदा के तुम अल्लाह को जाहिर कहते हो, हम कहते हैं हम बदा के कायल है, कहा नहीं खुद ही वो डेफिनेशन बना के खुद ही एतराज करते, हम इसका डिफेंस कर रहे हैं, जब हमारा वक्त आता हम यही करते, फतवे की डेफिनेशन है, फतवे की डेफिनेशन, अगर किसी मसले पे हदीस है तो ये हदीस सही है कि गलत है, एक से ज्यादा हदीस है इनमें से कौन सी ऑथेंटिक है, ये रिसर्च करके उस हदीस का हुक्म हम तक पहुंचाना, इसको फतवा कहते हैं। फतवा ये नहीं है कि आगा सिस्तानी अपने दिल से या अपने दिमाग से अपनी कोई राय ले रहे, वो कहे कि कई हदीसें हैं इनमें से, इनमें से कौन सी हदीस सही है, यह फैसला कैसे किया जाए। आपको तो एक हदीस बता दीजिए कि बिहार में लिखा हुआ है वॉल्यूम 52 में, कई हदीस उसी वॉल्यूम 52 में उसके साथ जो चार हदीसें लिखी हैं वो तो नहीं बताई जाएंगी ना, लेकिन मर्जी को तो अल्लाह को जवाब देना, इन पांच में से जो हदीस सही है इसको टेक्निकली इसको फतवा कहते हैं। तस्वुर क्या दिया जाता है, फतवे का मतलब है मर्जी की अपनी जाती राय और पर्सनल ओपिनियन, ये नहीं है फतवा। खैर बात बहुत फैल रही है, इसको मुख्तसर करो। अखबारियत का दूसरा है कि जब वो कोई बात कहेंगे कि हम तो हदीस की रोशनी में कर रहे हैं, वो देखिए मुश्तहिद वो तो अपनी राय देके फतवा दे, ये सिलसिला यहाँ शुरू हो गए, बल्कि बड़े फखर के साथ सीना ठोक के कहा जाता है मैं तुझे बात कह रहा हूँ हदीस की रोशनी में कह रहा हूँ, तो भाई और भी तो हदीसें इसी मौजू पर है। तीसरी और आखिरी बात इस वक्त के अखबारी हजरात जवाहिर कुरान को हुज्जत नहीं मानते, और मुश्तहिदीन के बाद जवाहिर कुरान हुज्जत, यानी क्या मतलब कुरान के अल्फाज का जो तर्जमा जाहिर, अखबारी कहते हैं हम इसको नहीं मानते, हम तो देखेंगे इमाम ने इसका क्या तर्जुमा किया है, जिस आयत का इमाम का तर्जुमा नहीं मिलेगा उस पर उसको हम पढ़ेंगे उस पर अमल नहीं करेंगे, और हमारे यहाँ के नहीं, कुरान की एक आयत है जो बिल्कुल वाजे है, तो अगर हदीस इमाम ना भी हो तो हमें जरूरत नहीं है कुरान को मुअत्तल करने की। बहुत बड़ी बात मैंने कही है, ये मुज्तहिदीन का फतवे का फाउंडेशन इस सोने के कुरान की आयतों से नतीजा निकाला जा सकता। मैंने मिंबर पे देखा कहा कि नहीं कोई आयत से नतीजा ना निकालो, इमाम की हदीस लो और तहरीर कुरान करने में बात साबित की गई है। अब ये वक्त बहुत ज्यादा, तो ये आहिस्ता आहिस्ता अखबारियत आ रही, मरहूमा सैयदा अंजलि फातिमा रिजवी के हवाले से बहुत अहम बात मैं कहने जा रहा हूं, जो मेरा अपना एक फैसला, वो इस मेलबर्न में रहकर जिंदगी भर वो हिजाब शर्की करती रही जिसमें चेहरा छुपाया जाता, तो अब किसी और अंदाज से इस बात को आपने सुना होगा, और मेरे एतबार से चलिए हर आदमी अपनी राय रखता है, लेकिन उसमें जो कि फेरे हराम एंटर हो गया इसलिए मैं बोल रहा हूं, आपने क्या सुना होगा, आपने ही सुना होगा कि भाई वो हिजाब जो है वो उसमें अगर नकाब भी डाली जाए तो ये ज्यादा अच्छा हिजाब है, शिद्दत हिजाब है, ये रिवायतों में भी इसकी तारीफ की गई है, तो आए खातून अगर तू अपना चेहरा खोल रही है तब भी उस पर एतराज रखकर जो चेहरा छुपा रही है, पहले तो ये समझ लीजिए टोंटिंग है एक जाकिरा पर, जिन्होंने अय्याम अज़ा में ये मसले पर बात की थी कि इस्लाम में चेहरा खोलना है, चेहरा छुपाना है, नकाब डालना ये नहीं है या इतना जरूरी नहीं। तो खैर अब मैं इस वक्त आज की मजलिस को इतना मुतनाजिया नहीं बनाना चाहता, जो वाजिब चीजें बता रहा हूं। तो अब व्हाट्सएप के ग्रुप में मैसेज आया मेरे पास भी आया कि एक ही सांस में तीन बातें कही गई जो कॉन्ट्राडिक्टरी। नंबर एक कि मरहुमा को इतना हिजाब का ख्याल था कि शिद्दत हिजाब की वजह से वो चेहरा खोल सकती थी लेकिन उन्होंने नकाब डाली, पहली बात। दूसरी बात, और अपनी औलाद की बेहतरीन तरबियत की, ये भी सही है बिल्कुल, और औलाद बड़ी ताबेदार भी थी, तरबियत तो हम भी करना चाहते हैं, बाद चीजों में औलाद कंट्रोल में आती है बाद में नहीं आती, उनकी औलाद ताबेदार थी, ये भी सही। तीन बातें कही लोगों ने, नतीजा निकाल कि अगर शिद्दत के हिजाब का ही मसला था तो अपनी बेटी को ऐसा हिजाब क्यों नहीं करवाए, किसी बेटी या माँ का तस्करा मेंबर पे करना गलत है लेकिन मसला शरी है, और मरहूमा की खिदमत है बता रहा हूँ, उन्होंने इसके जरिए से कि खुद नकाब डाली और बेटी के चेहरे पे नकाब नहीं है, अखबारियत की जड़ काटी है, उसूलियत को फैलाया है, बहुत बड़ी खिदमत की थी, जिहाद किया था उन्होंने, जो अखबारियत यहाँ ला रहे हैं ना उस किसी और तरीके से करेंगे, याद रखिए मुझे पर्सनली मालूम, वो इसलिए चेहरा नहीं छुपाती थी कि शिद्दत हिजाब, वो इसलिए छुपाती थी कि मरहूम आगा खुई की तकलीफ पर बाकी थी, आगा खुई के नजरिए में चेहरा औरत के लिए छुपाना, जैसे आज आयतुल्लाह हाफिज बशीर नजफी का फतवा औरत को चेहरा छुपा था, वैसा चेहरा नहीं खोल सकती। उन्होंने बताया कि मैं जिस मर्जे की तकलीफ में हूँ उसकी निगाह में चेहरा छुपाना है बेशक एहतियात वाजिब है, लेकिन एहतियात वाजिब तो उसी को कहते हैं ना कि उस पर अमल करना अच्छा होता। वो अपने मर्जी की वजह से चेहरा छुप, अब बेटी आकर सिस्तानी की तकलीफ में आप जुमला सुनिए जिसकी वजह से मुझे इतना कहने पे मजबूर होना पड़ा। आकर सिस्तानी के फतवे में मगरबी दुनिया में औरत के लिए चेहरा छुपाना हराम। बहुत कम लोगों को ये मसला मालूम है क्योंकि शिद्दत हिजाब में कहा गया कि नहीं चेहरा छुपाना अच्छी चीज है, आप ना छुपाए लेकिन जो छुपा रहे तो उसको अप्रिशिएट करे, हराम काम है अप्रिशिएट किस बात पे करे, हराम काम को। यह आगा सिस्तानी का फतवा है जो बहुत कम लोगों को मालूम है, इसलिए नहीं मालूम है कि जरूरत नहीं पड़ती। हमारी औरतें वैसे ही नकाब डालने को तैयार नहीं तो वो वैसे ही अमल कर रही है, लेकिन एक हराम काम को मुस्तहब बना के मैसेज देना क्या वजाहत कर की जाए। चंद दिनों बाद और कई चीजों की वजाहत होने वाली है, बात की तकारीर, लेकिन ये बिल्कुल ताजा ताजा बात थी। तो अब उन्होंने उस एतराज का जवाब दिया जो अखबारियों का सबसे बड़ा एतराज। मैं कहता हूँ कि वाहन हमारे सर एहतराम में झुक रहे हैं कि मोमिन ने हमने अपने घर में बैठकर वो उसूल हमारे सामने पेश किया जिसके बाद मर्जियत पे होने वाला सबसे बड़ा एतराज खत्म हो रहा है। मर्जियत पे मालूम है सबसे बड़ा एतराज क्या, जब कुछ समझ में नहीं आता क्या बोले मर्जी के खिलाफ तो क्या बोलते हैं मालूम, ये बोलते हैं कि देखिए इतने तो इनमें इख्तलाफ एक बात दूसरे अखबारी उलमा में आपस के इख्तलाफ मराजे से ज्यादा है। आपने अखबारी उलमा को पढ़ाई नहीं उनके इख्तलाफ, लेकिन उसको एक तरफ रखी कहा कि देखिए एक घर के अंदर अगर दो मर्जी की तकलीफ और होगी क्योंकि वालिदैन एक की तकलीफ कर रहे हैं, जो नस्ल है बाद वाली 25 साल बाद होती है ना नस्ल, 25 साल में मर्जी बदल जाता है दूसरे की तकलीफ में, तो अब एक घर का निजाम कैसे चले, बाप कुछ कर रहा है बेटी और कहां पे बात आएगी ईद का चांद वो फौरन आ जाएगा। देखिए घर में दो दो ईदें हो रही, बाप एक मर्जी की तकलीफ में बेटा दूसरे मर्जी की तकलीफ में, कैसे घरों का निजाम चलेगा। मरहुमा यहाँ 15 साल रही, 15 साल में कितनी ईदें आई होंगी, सिर्फ 15 ना, बकरीद में इतने हंगामे नहीं होते, ये 15 दिन का मसला। उन्होंने यहाँ 5000 दिन गुजारे हैं, 5000 दिन में अमल करके दिखा दिया कि माँ अपने मर्जी के फतवे पे अमल कर रही है, बेटी अपने मर्जी के फतवे पे अमल कर रही है, ना कोई इख्तलाफ हो रहा है, ना खानदान में फूट पड़ रही है, ना मोहब्बत खत्म हो रही
है।
सबसे बड़ा इतराज कि ये मराजे में आपस में इख्तलाफ होते हैं, घर का निजाम कैसे चले, ईद के ऊपर ये इतराज ज्यादा आता। उन्होंने 5000 दिन अपने घर का निजाम चला के बताया कि मुख्तलिफ मराजे की तकलीफ करके भी घर का निजाम इतने अच्छे तरीके से चलाया जा सकता, तो इस खिदमत को ही नजरअंदाज कर दिया गया। ये कहकर कि जी उनकी नकाब जो थी वो शिद्दत हिजाब की वजह से थी, यानी वो सुन्नत चीज पे अमल कर रही थी, नहीं वो उनके लिए वाजिब था उनके मर्जी के एतबार से इल्ला ही के रुजू करती, तो वो तो रुजू करना जरूरी नहीं। लेकिन ये जो एक पैगाम हमें मिल रहा कि एक घर के अंदर दो मुख्तलिफ तरीके अगर आ जाए वो इस्लाम के खिलाफ नहीं है, ये सबसे बेहतर तरीके से हमें फातिमा ज़हरा ने सिखाया है। उसी घर में हसन मुस्तफा भी है, उसी घर में हुसैन भी शहीद करबला भी है, हसन को भी फातिमा पाल रही है, हुसैन को भी फातिमा पाल रही है, ये सुलहनामे में दस्तखत कर रहा है और वो मैदान करबला में यजीद के खिलाफ तलवार फातिमा की दो रस्सी रखी। ठीक है हमें मालूम है कि वाइस वर्सा भी हो सकता है, अगर हसन करबला में होते तो वो जुल्फकार चढ़ाते, हुसैन अगर दरबारे हाकिम शाम के सामने होते वो सुलहनामे पे दस्तखत करते, लेकिन यहाँ भी यही, अगर माँ बेटी की जगह होती बेटी माँ की जगह होती तो यहाँ भी यही होता, बेटी नकाब डाल रही होती और माँ चेहरा खोल रही होती। तो ये फातिमा की सीरत का सबसे अहम पैगाम। और अब यहाँ पे जो असल बात मुझे कहना थी और जो बात अब मैं कहने जा रहा हूं, इस पर मुझे बहुत लोगों ने शाबाश दी, कहा ये जो शहादत की मजलिसें हैं ना, यहाँ तो एक है लेकिन महफिल अलसर में भी ये मजलिस में पढ़ रहा हूँ ऑनलाइन। महफिल अलसर कहाँ है, लॉस एंजलिस, दुनिया का आखिरी सिरा। ये क्या है, दुनिया का पहला सिरा, ये एक्सट्रीम ईस्ट है, उसके बाद तो खाली न्यूजीलैंड और वो एक्सट्रीम वेस्ट है, क्योंकि 14 घंटे का फर्क है ना, तो वहां कल शहादत की मजलिस हो गई थी जो मैंने आज सुबह आज यहाँ 4 बजे के टाइम पे पढ़ी है, वहां उस वक्त रात एक दिन पहले। तो खुलासा यह है कि वहां पर मजलिस मैंने पढ़ी, लोगों ने बहुत पसंद, लेकिन वो एक घंटा, यहाँ मैं 10 मिनट में ये पॉइंट मुकम्मल कर रहा हूँ। तो आपको इतना अच्छे तरीके से ये जुमला सुनने को नहीं मिलेगा, लेकिन बात समझ में आ जाएगी। और आपको तो पता है मैं जात वाद का इतना आदि नहीं हूँ, लेकिन जब कोई नारा लगाता है वाकई मेरा दिल खुश हो जाता है। हमारे बहुत ही मुत्तकी और एहतियात करने वाले बुजुर्ग, बहुत अजीब बात कह रहा हूं, उसको समझाने का वक्त नहीं है, लेकिन आइंदा 3 मजालिस में से एक में समझाऊंगा। वो हर नमाज को अव्वले वक्त में नहीं पढ़ते, 10 मिनट ताखीर से पढ़ते, उसकी एक वजह वो मैं बाद में बताऊंगा तो आपकी भी समझ में आएगी, फिलहाल तो नहीं। तो अगर थोड़ा सा नवाखानी में मैं मजलिस देर से खत्म करूँ, नवाखानी में टाइम हो जाए तो आप बहुत ज्यादा टेंशन मत लीजिएगा, बहुत ज्यादा टेंशन है तो फुरादा पढ़ के घर चले जाए। फिर सवाल आता, फुरादा नमाज अव्वल वक्त की सवाब ज्यादा है या जमात की नमाज 40 मिनट लेट? जवाब, तमाम महाराजे कहते हैं जमात की नमाज 40 मिनट तक लेट हो जाए तब भी उसका सवाब फुरादा से ज्यादा है। ये तो मैंने इसलिए कह दिया कि मेरे हाथ पांव खुद खुद है। दूसरी बात यह कि मौलाना ये आज आपने पहली मरतबा कहा कि नारे तो आपको भी बहुत पसंद है, आपकी तो निगेटिव रिपोर्टेशन कि आप नारे तो पसंद ही नहीं करते। नहीं, वो किस वजह से, शुरू शुरू में जब मैं मजलिस से पढ़ता था और शायद वो शहादत की जो बात की तारीख है उसमें भी एक आध मजलिस होगी तो अजाब कब्र बहुत होता, बड़े बड़े बिच्छू, बड़े बड़े सांप, बड़े बड़े कोड़े, बड़े वो होता, उसमें लोग नारे लगाते, नारे नारे नारे। तो मैं तो हैरान होता, लोगों ने बाद में कहा नारा कभी बात को पसंद करके लगाया जाता है, कभी जाकिर को मेंबर से उतारने के लिए लगाया जाता है। हम आगे नहीं बढ़ेंगे, उतरिए मेंबर से, हमको नहीं सुनना, इसलिए भी नारे लगते जब कई लगे, बहुत सारे लगे, तो इसलिए जरा समय वो घबरा गया। और अगर आप तौहीन महसूस ना करें तो आप ही के इलाके के एक मोमिन ने दुबई में जब ये बात सुनी तो मुझसे कहा, अच्छा मौलाना आपके पाकिस्तान में होता होगा, हमारे यहाँ तो आपकी टांग पकड़ के मेंबर से घसीट लें। लेकिन जब मैं गया हैदराबाद तो मैंने देखा कि सबसे कल्चर्ड लोग वहीं के हैं, या तो वो नहीं थे हैदराबाद के, बाहर के थे, हैदराबाद में आके रहने लगे या मजाक कर रहे थे। तो खुलासा ये कि जिस आयत की मैंने तिलावत की है, अब बात वहां से आगे बढ़े, सुभान अल्लज़ी पाक है वज़ा असरा बिअब्दिही, जो रात के वक्त लेके गई अपने बंदे मिनल मस्जिद अल हराम, मस्जिद हराम से इलल मस्जिद अल अक्सा, मस्जिद अक्सा। मस्जिद अक्सा किसे कहते हैं? ये लोग कहते हैं वो सीरिया में या आजकल वो जरूशलम में जो मस्जिद है वो है मस्जिद अक्सा, वो नहीं है मस्जिद अक्सा। अक्सा अरबी का लफ्ज है, अक्सा के माने दूर दूर दूर, बहुत दूर, सबसे दूर। अक्सा सुपरलेटिव है, सबसे दूर जो जगह है उसको अक्सा कहते हैं। जैसे पैगंबर के जमाने में लोगों में कंसेप्ट था चीन बहुत दूर, तो कहा कि इल्म हासिल करो चाहे इतनी दूर जाना पड़े। जब मैंने कनाडा और अमेरिका वालों को बताया कि जी मैं ऑस्ट्रेलिया में रहने जा रहा हूँ, तो बोला कहाँ जाके फंस रहे हैं आप, वो इतना दूर कि खाली आदमी तसव्वुर करके घबरा जाता है, इतना दूर, बहुत दूर लगता था ऑस्ट्रेलिया और अभी भी लगता। लेकिन ये दुनियावी दूर, अभी भी आपसे कहा जाए नॉर्थ पोल आपको दूर लगेगा, मस्जिद अक्सा के माने सबसे दूर, सुपरलेटिव बनाइए सबसे दूर। तो ये तो यरूशलम तो कोई इतना दूर नहीं, और ये आयत तो मक्के में नाजिल हुई, मक्के से तो 2 घंटे की फ्लाइट है यरूशलम। मस्जिद अक्सा अल्लाह ले गया बंदे को मस्जिद अल हराम मक्के से मस्जिद अक्सा तक। मस्जिद अक्सा ये नहीं है, वो 7th आसमान पर जन्नत के बिल्कुल बीच में जो असली खाने काबा है जिसका नाम है बैतुल मामूर, वो है मस्जिद अक्सा। तो ये भी तो मस्जिद अक्सा नहीं, ये दुनिया का एक तरीका कि जो अहम जगह होती है उसके नाम पर फिर मुख्तलिफ शहरों में मस्जिदें बना लेते हैं। हमारे यहाँ कराची में महफिल खुरासान है, तो क्या ये वो जगह है जहाँ 8वां इमाम दफन है? नहीं, उस खुरासान के नाम पे यहाँ बनाई। जहां मेरा बचपना गुजरा वो है मस्जिद करबला, शाह करबला, तो क्या वो करबला है जहां इमाम हुसैन नहीं उसके नाम पे इसका नाम रखा गया। तो इसी तरह वो मस्जिद के नाम पर यरूशलम की मस्जिद का नाम रखा गया। असली है मस्जिद अक्सा बैतुल मामूर जो सातवें आसमान पर, और रिवायत में यह है कि वो इस खाने काबा के बिल्कुल ऊपर, ये खाने काबा उसके बिल्कुल नीचे। इमाम ने समझाया अगर कोई आदमी बैतुल मामूर में जाए और कोई चीज अपने हाथ से फेंके और उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे तो सीधा आके इस काबे की छत से टकराए, इतना ही एक दूसरे के नीचे। और एक छोटा सा फिक्री मसाला और बता दूं, वक्त तो नहीं है, वो यह है कि नमाज खाना काबा की डायरेक्शन में होती है और तवाब खाना काबा का होता, दोनों में फर्क। डायरेक्शन कहते हैं जिस तरफ काबा, चाहे आप काबे के ऊपर भी हो, तो ना अगर आप एक 60 स्टोरी मंजिल में जो 60 स्टोरी बिल्डिंग है आपका अपार्टमेंट है 60th फ्लोर पे नमाज पढ़ेंगे तो काबा तो आपसे नीचे, आपकी नमाज सही क्योंकि डायरेक्शन काबे का। लेकिन तवाब अगर आप मक्के में जाके 4th फ्लोर से करेंगे आपका तवाब गलत क्योंकि काबा आपसे नीचे रहेगी। तो काबे तवाब और नमाज दोनों काबे के होते हैं? नहीं, तवाब काबे का होता है, काबा उसके गिर्द घूमे, नमाज काबे की तरफ है, काबा नहीं है। अपना रुख फेर लो काबे की तरफ। तो असली काबा बहरहाल सातवें आसमान पर, पैगंबर वहां गए। अब कुरान की इस आयत में बहुत मुख्तसर, कुरान की इस आयत में कौन गया? अब्दी रसूल, कौन लेके गया? सुभान अल्लज़ी, वो जात, वो अल्लाह। कहां से लेके गया? मस्जिदुल हराम। कहां लेके गया? मस्जिद अक्सा। सारी चीजें आगे ना, जब कोई आप सुनते हैं फुला आदमी की ट्रेवलिंग हुई, कौन किसने बुलाया? फुला, किसको बुलाया? इसको। कहां से लेके गया? यहां। कहां लेके गया? वहां। क्यों लेके गया? असल चीज तो ये है ना, बाकी सारी चीजें तो जिमनी है, असल लेके क्यों गया इसको? काले नोरे या हुमिना या पेना, ताकि हम उसको अपनी एक निशानी दें, एक निशान, एक निशान। यही मौला की हदीस आई, अना आयतुल्लाहिल कुबरा, अना आयतुल्लाहिल उज़्मा। कौन सी निशानी दिखाने ले गया अल्लाह? मुझे दिखाने ले गया इसलिए कि अल्लाह की सबसे बड़ी निशानी मैं, अल्लाह की सबसे अजीम निशानी मैं। तो पूरे सफर मेराज का मकसद मौला इमामत का ऐलान। दो चीजें हैं याद रखिएगा, फर्ज ज़हन में रखिएगा, इमामत उसूल दीन में है, विलायत फुरू दीन में। विलायत उसूल दीन में नहीं है, लेकिन ये फर्क नहीं समझा सकता, टाइम नहीं है, अभी तीन तकारीर और होंगी, मजमा नहीं होगा तो क्या फर्क पड़ेगा। मैं तो हूंगा ना इंशाअल्लाह अगर जिंदा रहा, ये वादा कंडीशनल, मेरी कब्र पे आके डंडे न मारिएगा कि मौलाना आपने तो अपना वादा पूरा नहीं किया। तो अब विलायत अली, चलिए विलायत अली, अल्लाह लेकर गया अली की विलायत का ऐलान करवाने, ले नो रे या हमें ना या देना, ताकि हम अली की विलायत, अली अल्लाह की निशानी है वो अता करें। यह सफर मेराज का पूरा मकसद, दुनिया की तारीख का सबसे ज्यादा मेडिकल वाला ट्रेवल पैगंबर का। आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जहां पे जवाब दे जाती है वहां सफर मेराज शुरू होता, लेकिन मकसद ये है ना विलायत अली। फिर एक चीज मुझे बताइए, विलायत अली और ये अक्सर होता है, अक्सर होता है, मैं कुछ चीजें बाजार में खरीदने जाता हूँ, मैं उनके नाम नहीं ले रहा हूँ कि तौहीन मौला के नाम, कुछ चीजें लेने जाता हूँ, दुकानदार कहता है साथ में ये चीज भी ले जाइए, ये इसके प्रोटेक्शन के लिए बहुत जरूरी है। अभी फर्नीचर खरीदा मैंने, उसने साथ में कुछ पॉलिश वगैरह भी दे दी कि ले जाइए ये इस्तेमाल कीजिए, ये फर्नीचर आपका जो है हमेशा महफूज रहे। पुराने जमाने के अंदर वो कंप्यूटर का वो जो मॉनिटर होता था बड़ा बेढंगा सा भद्दा सा, या टेलीविजन का, तो साथ में उसके लिए ऊपर वो कर्टन डालने के लिए या प्रोटेक्शन के लिए वो एक प्लास्टिक का एक कवर भी देते थे। आपकी गाड़ियां होती है उसके ऊपर कवर आ जाता है तो छुपा लीजिए। ये तो बहुत छोटी चीजें हैं, तो ही ना अगर महसूस हो रही है तो मैं माजरत खाऊं। तो जब कोई अहम चीज दी जाती तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी कोई चीज अदा की जाती है। फातिमा ज़हरा का एक नाम है तोहफा मेराज, हिमाए मेराज, फातिमा सहरा वो जात है जो अल्लाह के रसूल को मेराज में मिली है। अल्लाह के रसूल आप तो गए थे विलायत अली को लेने के लिए, लेके फातिमा आ रहे हैं, यही तो मैं पैगाम देना चाह रहा हूँ, विलायत अली की प्रोटेक्शन, विलायत अली का डिफेंस, विलायत अली का बचाव फातिमा है। अगर फातिमा ना रही तो विलायत अली बाकी नहीं रह सकती। कॉमन सेंस इस्तेमाल करे इंसान कि विलायत की अली के लिए बुलाया जा रहा है, दी जा रही है फातिमा जैसी नेमत। हेबाए फातिमा का एक नाम हेबा है, फातिमा का नाम तोहफा है, ये मेराज का तोहफा है। तो विलायत अली को बचाने के लिए फातिमा जरूरी है। और अभी एक बात मुझे और भी कहना थी, एक जुमले में कह दूं कि मुझे यकीन है कामिल है कि अगली मजलिस में मुझे उस्ताद अहमद मामी नहीं मिलेगा, चौथाई भी नहीं मिलेगा, जिसकी मुझे परवाह नहीं है। एक बात कह दूं, लेकिन मेराज में पैगंबर को एक नहीं दो तोहफे मिले, फातिमा भी मिली है और नमाज भी मिली है। अब मजमा ठंडा हो जाएगा, लेकिन मैं तो जिंदगी भर ऐसे ही मजमे में पढ़ चुका। दो तोहफे मिले हैं, मेराज का नमाज का नाम क्या है, तोहफा है मेराज। नमाज कब वाजिब हुई, मेराज में वाजिब हुई है। तो दो तोहफे अल्लाह ने मेराज में दिए, बता दिया। अगर विलायत अली को बचाना है तो फातिमा को मरना पड़ेगा, नमाजों को कायम करना पड़ेगा। और जो जुमला मैंने अभी कहा है इसे कुरान की आयत बना दू, इन्ना आतैना कल कौसर फसल्ले लिरब्बिक, हमने तुम्हें फातिमा दिए, फौरन नमाज पढ़ो। कि फातिमा और नमाज एक दूसरे से अलग नहीं हो सकती।
नारे
सबसे बड़ा डिफेंडर फातिमा है और नमाज, ये दो चीजें फिर के हमको इसीलिए सूरह फसल देखिए फसल है, फौरन जहां फातिमा आता हुई फौरन कहा कि नमाज पढ़ो। और यही वजह कि टूटे हुई पसलियों के साथ भी फातिमा ने नमाज पढ़ के हमें दिखाई। बस अब मैं बहुत जल्दी बात खत्म कर रहा हूँ, क्योंकि खवातीन में ताबूत भी बरामद होगा और मर्दों के अंदर नोहाखानी भी ज्यादा होगी। और मसाहब कुछ तो वक्त तो लगेगा, एक छोटी सी बात अर्ज कर, ये दो चीजें मिली हमें और हमने देखा कि आखिर आखिर में फातिमा की हालत थी कि बिस्तर से उठकर खड़े होने की ताकत नहीं थी, लेकिन वक्त नमाज आता था तो एक हाथ से टूटी हुई पसली संभालती थी, दूसरा हाथ दीवार पे रखती थी, आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा के मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ती थी। मगर इस हालत में फातिमा ने एक अहम मसले शरीया में बताया अपनी वसीयत। वसीयत इस्लाम का एक बहुत अहम हुक्म है। और मैं एक जुमला कहता हूँ, आज की तकरीर कुछ ऐसी हो कि सिर्फ फिक्री मसले बता रहा हूँ, लेकिन लोगों के जहन गलतफहमी हो जाएगी, लेकिन हो जाए मेरे पर मुझ पर वाजिब। वसीयत फातिमा ने आखिरी वक्त में कितनी वसीयतें की, सब सुन रहे हैं आप, यानी आप मजलिसों में सुन रहे हैं, किसको की है? मौला अली को की। इनमें एक वसीयत कम पढ़ी जाती है कि कहा कि या अली, ये अलमारी में कुछ शीशियां रखी, जब मुझे दफन करना तो मेरे कफन में इनको भी रख लेना। मौला ने पूछा कि बिनते रसूल ये कौन सी शीशियां, कहा इसमें मैंने वो आंसू जमा किया है जो खौफे खुदा से मेरी आंखों से जारी है, खौफे खुदा से इतना रोने वाली। और इसके बाद और वसीयत है, हर मोमिन की जिम्मेदारी है कि जिंदगी में वसीयत करे, लेकिन सही वसीयत। अभी हाल ही में वसीयत के हवाले से किसी तकरीर में एक एडवाइस आपको दी गई कि आप फला वेबसाइट पे जाइए, वसीयत नामा मौजूद है, बेहतरीन उस पर अमल कीजिए। अब मेरी एडवाइस सुनिए, कतन उस पर अमल ना कीजिए, वो गलत। उसका पहला मसला ही इस वसीयत नामे का हराम है। जिस माल हराम से आप अपने आप को बचा रहे हैं, वो माल हराम आपके बच्चों को खिला रहा है, वो वसीयत नामा। अब बहुत बड़ा मैंने जुमला कह दिया, इतना शायद बड़ा मसला ना हो, लेकिन है वो अपनी जगह। वो वसीयत नामा एक ईरानी वसीयत नामे की कॉपी। ईरानी वसीयत नामे वेस्ट में नहीं चलेंगे। मुझसे लोग कहा करते थे जब मैं पीएसपी में था कि महाराज आपका टनल विजन, आप यहाँ वेस्ट में रह के बात कर रहे हैं पाकिस्तान के देहातों की, मेरा टनल विजन है कि नहीं, लेकिन ये वसीयतनामा टनल विजन। आपको वो वसीयतनामा चाहिए जिसमें आपके मॉर्गेज के, आपकी वाइफ के साथ के मसले हों, कितना उसने कमाया, कितना आपने कमाया, उसने जो कमाया आपको गिफ्ट किया है या अपनी मिल्कियत में रखा है, आपको वो वसीयतनामा चाहिए जिसमें आपकी वाइफ की जो अर्निंग हो जो बैंक में, वो आपकी है कि उसकी है, जो आपकी है तो उसके नाम है, तो क्या नाम को इस्लाम मान लेगा, ज्वाइंट अकाउंट का मतलब है कि नहीं है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। और यही जरूरत है, यही तो काम आएगा। चुनाचे वेस्ट में बहुत अच्छे वसीयतनामे लिखे गए, खोजा जमात ने, वर्ल्ड फेडरेशन ने एक वसीयतनामा तैयार किया जो शायद आपको उनकी वेबसाइट पर या स्टैम और हुज्जत की वेबसाइट पर मिल जाएगा, वो है आपके काम। या मौलाना सैयद मोहम्मद रिजवी साहब जो मेलबर्न में दो दफा तो मेरे सामने अशरा पढ़ के गए, उनका एक वसीयतनामा 4 सफ़े का नहीं है, वो 50 पेजेस का। तो आपको जो आपके काम है, ये ना हो कि भाई हमने वसीयतनामा लिख भी लिया तो फायदा भी नहीं हुआ वारिसों के। और ये जो वसीयतनामा आपको बताया गया, उसका पहला मसला ही गलत, इसके अंदर पहले हराम माल हराम इन्वॉल्व हो रहा। मैं आइंदा तकरीर में बताऊंगा, आज वक्त में सिर्फ ये कह रहा हूँ इसके ऊपर रिलाई करके बैठना जाइएगा जिन्होंने इस पर अमल किया, और जो अब तक नहीं गए तो जाइए। मैं किसी की तौहीन नहीं करना चाहता, लेकिन जब एक हराम काम हो रहा है मुझे बोलना वाजिब, क्योंकि वसीयतें सीरत फातिमा का हम तरीन हिस्सा। लेकिन जितनी वसीयतें फातिमा ने की सब अपने शौहर से की, खबरदार इन लोगों को मेरे जनाजे पे ना आने दीजिए, ये भी मौला से कहा था। मेरे जनाजे को उस तरह उठाइए जैसे अस्मा ने बताया औरत का हिजाब किस तरह बच जाता है, वो गहवारा रहा। बाकी मसाइल में आइंदा तकरीर में पढ़ूंगा, लेकिन सिर्फ एक आखिरी नुक्ता, मगर दो वसीयतें खास ज़ैनब से की, और उस वक्त की है कि जब घर में अली भी नहीं थे, हसन भी नहीं थे, हुसैन भी नहीं थे, सारी वसीयतें मौला अली से की गई। तरीका भी यही, बीवी वसीयत शोहर से करके जाती, और एक नहीं इतनी वसीयतें कि अगर खाली उस पर मैं बात करूं तो 3 मजलिस से भी कम है। लेकिन दो वसीयतें उस वक्त, जब हसन हुसैन नाना की कब्र पे सुबह सवेरे जाके नाना से बातें कर रहे थे, और मौला अली हसनैन की तलाश में चले, जब फातिमा का जुमला सुना, फातिमा ने कहा अबुल हसन आज मेरी दुनिया में आखिरी सांसें हैं, मैं जा रही हूं। घबरा के कहा कि ये आपने कैसे कह दिया, कि अभी मैं सोई थी ख्वाब में, मेरा बाबा भी आया था और मेरी माँ खदीजा ताहिरा भी आई, और मैंने कहा था बाबा आपके बाद तो मुझ पर बहुत मुसीबतें पड़ी। इंशाल्लाह ये सारी रिवायत तफसील से दूसरी तारीख को पढ़ूंगा अगर जिंदा रहा। अब बस इतना ही लिखा है कि मैंने फरियाद की कि बहुत मुसीबतें पड़ी, लेकिन मेरा दिल कहता कि अपना ही लिखा हुआ नोहा बाबा के सामने पढ़ा होगा, बाबा सुब्बत अलैया मसाइब लौअन्ना सुब्बत अलैया में सिरना लिया लिया, अगर दिनों पे ये मसाइब पड़े तो वो रातों में बदल जाए। बाबा ने कहा बेटी घबराओ नहीं, आज हम तुम्हें लेने आए हैं, और अकेला मैं नहीं आया, तेरी माँ खदीजा भी तुझे लेने आई है, चलने की तैयारी कर। मौला ने घबरा के अस्मा को देखा, अस्मा इस वक्त को बच्चों को माँ के पास होना चाहिए, हसन हुसैन कहाँ, कहा मौला वो तो रोजाना नाना की कब्र पे जाके बैठते हैं, दोपहर तक बैठते हैं, नाना से बातें करते रहे। अली ने कहा आज कब्र रसूल पे बैठने का दिन नहीं है, ये कह के मेरा मौला भी बाहर निकला। अब घर में सिर्फ ज़ैनब है, कुलसुम है और फातिमा। और एक मरतबा अस्मा बाहर सहन से देख तो रही है, करीब बुलाया ज़ैनब को, अस्मा की निगाह है करीब बुलाया, ज़ैनब बेटी अपना कान मेरे मुंह के करीब कर दे, तेरी माँ दुनिया से जाते जाते कुछ वसीयतें तुझसे करना चाहती है। ज़ैनब माँ के करीब, अस्मा सुन न सकी देख रही। अब उसके फौरन बाद वो मसाइब आ गए जो इंशाल्लाह मैं दूसरी तारीख में पढ़ूंगा। लेकिन जब ये मसाइब का वक्त गुजर गया, फातिमा दफन हो गई, अस्मा ने एक मरतबा तड़प के कहा था शहजादी ज़ैनब जरा मुझे तो बताइए मेरी शहजादी फातिमा ने आपसे आखिरी वक्त में क्या कहा। ज़ैनब ने कहा कि नहीं अस्मा, ये अम्मा का राज है, मैं तुझे नहीं बता सकती। हसन हुसैन भी करीब खड़े थे, सुन लिया। एक मरतबा आगे बढ़े, कहा ज़ैनब बहन हमें तो बता दो ना। कहा कि नहीं अम्मा ने कहा था हर एक से छुपा के, तो क्या हमेशा छुपा के रखा, नहीं नहीं, एक वसीयत 15 साल बाद सामने आ गई और एक वसीयत 50 साल बाद सामने आ गई। दोनों बार ज़ैनब अपने भाइयों को मुखातब किया था, भैया देख ये वसीयत, 15 साल बाद क्या वसीयत सामने आई। माह शाबान की एक सुबह मौला मस्जिद में खबर मिली, मौला आपको बेटा मुबारक हो, उम्मुल बनीन को अल्लाह ने एक बेटा अता किया। मौला एक मरतबा मस्जिद में शुक्राने की नमाज पढ़ते, फिर अपने हुजरे में आते, उम्मुल बनीन के पहलू में देखा, नन्ना सा बच्चा देखा, झुकके उठाया चेहरा देखा, कहा कि बच्चा तो वैसे ही है जिसकी मुझे तमन्ना थी, लेकिन उम्मुल बनीन तुम क्यों इतना परेशान, मौला जब से पैदा हुआ है आंखें नहीं खोली। मौला मुस्कुराए, याद आ गया यही कंप्लेंट तो मेरी माँ ने भी रसूल अल्लाह से की, कनीज से कहा मेरे हुसैन को बुला के लाओ। हुसैन आए, बाबा क्या हुक्म है। कहा बाप एक तो तोहफा तेरी खिदमत में पेश कर रहा है। ये कह के बच्चे को हुसैन की गोद में रखा, हुसैन की गोद में बच्चा पहुंचा, आंखें खोली, पहली ज़ियारत हुसैन के चेहरे की थी, तभी आशीरे को तलब तलब के कह रहे थे मौला दिल चाहता है कि आखिरी ज़ियारत भी आपकी। लेकिन बाद उलमा कहते हैं कि बच्चा हुसैन की गोद में गया, आंखें तो बाद में खोली, नन्ने नन्ने हाथ पहले फैला दिए, शायद कह रहे हो कि आका हाथों का नजराना तो अभी से ले। अली ने बच्चे आंखें खुल गई ना, उम्मुल बनीन का मसाला हल हुआ ना, बच्चे को गोद में लिया, एक कान में अजान करी, एक कान में इकामत करी और चेहरा देख के कहा इसी के लिए तो रसूलुल्लाह कह गए थे कि मेरे इस बेटे का नाम अब्बास होगा, ये रसूल नाम रखे गए हैं। इससे पहले भी अली के यहाँ बेटे पैदा हुए, मोहम्मद या रफी। ज़ैनब माँ की खिदमत कर रही है लेकिन अब्बास का नाम सुना, सारे काम छोड़ के बाबा के करीब आई, कहा बाबा मेरे इसी भाई का नाम अब्बास है। अली ने कहा ज़ैनब तेरे इसी भाई का नाम अब्बास है, एक लम्हे के लिए अब्बास मेरी गोद में तो दे दी। अली ने अब्बास को ज़ैनब की गोद में दिया, ज़ैनब के बच्चे को लिया। अब ज़ैनब झुकी और बच्चे के कान में मुंह रख के कुछ कहने लगी। अली ने मुस्कुरा के कहा ज़ैनब जल्दी किस बात की, तेरे पास ही रहेगा, तू ही इसे पालेगी, और जल्दी है बातें करने की, ठहर जा। ज़ैनब घबरा गई, कहा बाबा इस वक्त बहन भाई से बात नहीं कर रही है, एक अमानत अदा कर रही हूँ। 15 साल पहले अम्मा ने मुझे बुलाया था और कहा था बेटी ज़ैनब तेरा एक भाई अब्बास नाम का पैदा होगा, तब फातिमा जिंदा ना होगी। अब्बास के कान में सिर्फ इतना कहना, अब्बास फातिमा तुम्हें सलाम और कहती है। दुनिया से जा रही है फातिमा, पसलियां टूटी हुई हैं, सीने में मेख कड़ी है, पहलू पे कोड़े का जख्म है, मगर कितना ख्याल है अपने हुसैन का, बाप फातिमा तुम्हें सलाम कहती है। ये 15 साल बाद वसीयत सामने आई और दूसरी वसीयत 50 साल बाद सामने आई। कब? जब करबला में वो मानता गया कि हुसैन अकेला रह गया, न साहबी है, न अंसार है, न रिश्तेदार है, न घर वाले है, और आखिरी रुख्सत के बाद मख्तल की जानिब चलने लगे। एक बार ज़ैनब तेरे खेमा भरा, कहा भैया जरा गले पर से अमामा तो हटा दो, ये टुकड़ा तो हटा दो। हुसैन ने गर्दन पर से अमामे का टुकड़ा हटाया, ज़ैनब ने भाई के गले का बोसा लिया। हुसैन घबरा गए, कहा ज़ैनब ये बोसे का कौन सा वक्त है? कहा भैया तू 50 साल से पूछ रहा था ना अम्मा की आखिरी वसीयत क्या है, ये अम्मा की आखिरी वसीयत। फिर आके कहा ज़ैनब मैं करबला में ना होंगी, मेरे उस लाल का बोसा देना जिस पर फातिमा का खंजर चलेगा। हुसैन ने कहा ज़ैनब जरा तुम भी शाने पर से जरा चादर को हटा दो। ज़ैनब ने चादर हटाई, हुसैन ने झुक के ज़ैनब के बाजू का बोसा लिया। अब ज़ैनब घबरा के भैया ये बोसा का कौन सा वक्त है? कहा भाई बहन का बोसा नहीं दे रहा, मुझे 21 रमजान याद आ रही, बाबा ने कहा था। हुसैन ने कहा जब करबला में आखिरी रुख्सत के लिए जाना, मेरी उन ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना जिसमे रस्सियां बांधकर बाजारों और दरबारों में ले जाया जाएगा। अरे दुनिया से जाते जाते फातिमा को अपने नाल हुसैन का कितना ख्याल था, दोनों वसीयतें हुसैन के बारे में है ज़ैनब से। बस आखिरी जुमले, अली ने क्या कहा था? ज़ैनब के बाजुओं का बोसा लेना रस्सियां बांध के बाजारों में ले जाया जाएगा। फातिमा दुनिया से गई, पूरा दिन अली ने इंतजार किया, तारीखी शब में फातिमा का जनाजा उठाया। मौला फातिमा का जनाजा तारीखी शब में उठ रहा है, जरा आइए 11 मुहर्रम, ये शहर कूफा, यही आदमी ज़ैनब, ये बलवाया, ये ज़ैनब के सर पे चादर नहीं, ना गर्मों के बीच में ज़ैनब जा रही। हाय मेरा बाबा, खवातीन ताबूत बरामद करें, भर फल रात होने पे जगह से खड़े होंगे मातम छोड़।